والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا
اللہم صلی علی محمد
واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهلا وتذل بها النفاق واهلا وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامه الدنيا والاخره رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد و
آل
محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ صلوات علی محمد اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کو لے کر آئیں اور یہ کام آپ انجام دے رہے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ان کے رب کی اجازت سے اور جس راستے کی طرف آپ لے کر آ رہے ہیں جو روشنی ہے یہ اس خدا کا راستہ ہے جو صاحب عزت ہے اور قابل تعریف ہے برادران عزیز پروردگار عالم نے جیسے کہ میں نے عرض کیا بارہا آپ نے سنا اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہی کے اندر پروردگار عالم نے اس راستے کی طرف متوجہ کیا کہ جو انسان کے دل کی آواز ہے کہ جہاں وہ اس منزل پر پہنچتا ہے کہ وہ خدا کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ مالک میں تیری ہی عبادت کرنا چاہتا ہوں تیری ہی عبادت کرنے کا میرے اندر ذوق ہے میری فطرت کی آواز ہے اور اس کے لیے میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں کہ تو مجھے بتا کہ تیری عبادت کیسے کی جائے اور اسی کے لیے وہ بے اختیار اپنے ہدایت کی دعا خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ مالک یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ جب تو ایک ہے تو راستہ ایک ہی ہونا چاہیے اور یہ راستہ ان لوگوں کا ہوگا کہ جن کے اوپر تو نے نعمت ہدایت نازل کی ہے جو تیرے مغضوب علیہم ہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں ان کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا اور جو خود راہ بھٹکے ہوئے ہیں ان کا راستہ بھی صراط مستقیم کیسے ہو سکتا ہے تو جو نعمت ہدایت لے کر اس دنیا کے اندر آئے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کا راستہ صراط مستقیم ہے نہ ان پر خدا کا کبھی غضب نازل ہوا نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے اور نہ غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے تو اسی کا دوسرا نام ہے ان کا معصوم ہونا اس لیے کہ اگر وہ معصوم نہ ہوتے تو یا تو بھٹکے ہوئے ہوتے کسی نہ کسی دائرے کے اندر اور یا پھر ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو جاتا تو پھر وہ حجت نہ بن پاتے پھر وہ رول ماڈل نہ بن پاتے اس کے فوراً بعد سورہ بقرہ کے اندر پروردگار عالم نے انسانوں کی تین کیٹیگریز بیان کی پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب یعنی وہ افراد ان کا راستہ ہدایت ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین کہ یہ کتاب یہ ہدایت ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے فکر نجات رکھنے والوں کے لیے جو متقین کا ترجمہ علامہ سید علی نقی صاحب نے کیا وہ یہی ہے کہ فکر نجات رکھنے والے اور اس کے دلائل بہت سے ہیں کہ یہ ترجمہ یہاں پر کیوں بہت زیادہ فٹڈ ترجمہ اور ٹرانسلیشن ہے मगर अभी मैं उस बहस में नहीं जाता, मैं बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि those who are cautious about their future, कि जिनको वरी है, जो इस बारे में परेशान है कि वाकई इस दुनिया के बाद एक दूसरी दुनिया है कि जहाँ पर जाकर हिसाब किताब होना है, वो जो सूरह फातिहा के अंदर मालिक यौमिद्दीन के ज़रिए से ज़हन इंसानी को मुतवज्जे किया गया कि हिसाब किताब है, क़यामत है, और वहाँ पर जो हिसाब किताब होना है उसी के लिए तो हमें हिदायत चाहिए कि यहाँ पर वो न करें कि जिसकी वजह से वहाँ पर अकाउंटेबल ठहराया जाए। तो अब एक इंसान जब हिदायत को किताब में तलाश करे तो परवरदिगार आलम ने कुरान को पेश कर दिया, रोल मॉडल की सूरत में तलाश करे तो पैगंबर अकरम है, मासूमीन है जो हमारे सामने पेश किया गया, और फिर उसके बाद परवरदिगार आलम ने कहा कि ये हिदायत करेगी किताब, मगर उनकी हिदायत करेगी जो साहिबान तकवा है, जिसके लिए मैंने अर्ज किया कि कम से कम इतना तकवा तो हो कि उन्हें फिक्र निजात हो, कि वो अपने सेल्वेशन के बारे में फिक्रमंद हों, कॉशियस हों कि होना क्या है, ऐसा ना हो कि हम नाकाम हो जाएं। जब एक इंसान कॉशियस होता है अपने मुस्तकबिल के बारे में तब वो प्लानिंग की तरफ जाता है, वरना तो वो आवारगी के साथ अपने वक्त को ज़ाया कर देता है। जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम वक्त ज़ाया करने वालों के लिए मौला की ये तंबीह है इस जुमले के अंदर कि अल-फुर्सतो तमुर्रु मर्रस सहाब, कि ज़रा आसमान पर देखो, बादल कभी इंतज़ार नहीं करते कब आए और कब चले गए। जिस तरह से बादलों के जाने का पता नहीं चलता, उसी तरह से फुर्सत के लम्हात भी किसी का इंतज़ार नहीं करते। अल-फुर्सतो तमुर्रु मर्रस सहाब, फुर्सत के लम्हात बादलों की तरह से आते हैं और चले जाते हैं, फिर इंसान पछताता रहता है, रिग्रेट करता है कि वो वक्त मैंने ज़ाया कर दिया। तो यहाँ फिर परवरदिगार आलम ने कहा कि फिक्र निजात अगर है तब तो ये किताब हिदायत करेगी, लेकिन अगर तुम सीरियस ही नहीं हो तो फिर किताब अगर तुम पढ़ भी रहे हो तो उसका नतीजा क्या निकलना है। नुनज़िलु मिनल कुरआन, ये दूसरे मकाम पर सूरह बनी इसराइल में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि ये कुरआन है कि जिसको हम नाजिल कर रहे हैं, हुवा शिफाउन व रहमा लिल मोमिनीन, अगर कोई साहिब ईमान है तो उसके लिए ये नाजिल होने वाली आयतें शिफा भी हैं और रहमत भी हैं, मगर अगर कोई काफिर है, रमा यजीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, तो काफिर अपने कुफर के साथ जब इस कुरान को पढ़ेगा तो खसारे में इजाफा होगा, उसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तब आप और फरमाइए केस क्या, यहीं से हमें वो हदीस भी समझ में आ जाती है जिसके अंदर मासूम ये इरशाद फरमाते हैं कि रुब्बा तादिल कुरान वल कुरान यलअनहु, कि कई ऐसे कुरान की तिलावत करने वाले हैं कि कुरान की वो तिलावत करते हैं, कुरान उन पर लानत भेजता चला जाता है। तो सिर्फ तिलावत काफ़ी नहीं है, जब तक तिलावत के साथ साथ इंसान अंदर से अपने आप को प्यूरीफाई करने की कोशिश ना करे, ये वही फिक्र निजात है। यानी यहाँ पर जब ईमान की बात आए, वहाँ पर जब तकवा की बात आ रही है, तो क्या मतलब कि पहले एक इंसान पूरी तरीके से मुसलमान हो जाए फिर उसके बाद कुरान से इस्तेफादा करेगा? नहीं, पहले मरहले के अंदर कम से कम उसके अंदर फिक्र निजात हो, और फिर अगर वो सीरियसली और संजीदगी के साथ अपने निजात के बारे में फिक्रमंद है तो अब कुरान मजीद यकीनन उसकी टारगेट ऑडियंस में ये शख्स भी शामिल हो गया, कुरान मजीद की जो टारगेट मार्केट है उसके अंदर ये फ़र्द भी शामिल हो गया। इसके मुकाबले में फिर परवरदिगार आलम ने एक कैटेगरी का तारुफ करवाया और कहा कि वो जो कुफर को इख्तियार करने वाले हैं, इन्नल्लज़ीना कफरू, जिस आयत पर हम बात कर चुके हैं कि यकीनन वो लोग के जिन्होंने कुफर को एज एन ऑप्शन लिया, जिन्होंने बाई चॉइस कुफर को इख्तियार किया, सवाउन अलैहिम, अहबी बराबर है, अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, आप उनको डराएं ना डराएं वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। दीज आर द लॉस्ट केसेस, कुरान मजीद की रोशनी में ये दूसरी कैटेगरी है जिसको मुतवज्जे किया गया कि ये लॉस्ट केसेस हैं, यानी ये तय कर चुके हैं कि हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी कुरान मजीद ने बयान की सूरह बकरा के अंदर कि वो लोग जो मुनाफिक हैं, वो लोग जो निफाक के साथ आते हैं, जब मुसलमानों में मोमिनीन के दरमियान आते हैं तो इजहार ईमान करते हैं, और जब कुफार के दरमियान बैठते हैं तो कहते हैं कि हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे, हम तो तुम्हारे ही साथ हैं। जब उनसे कहा जाता है ज़कील अलहुम ला तुफ्सिदु फिल अर्ज, के ज़मीन में फसाद बर्पा मत करो, कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो बड़ी इंतहाई मक्कारी के साथ वो ये तबसरा करते हैं हम और फसाद, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाह करना चाहते हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, हम फसाद नहीं करना चाहते। ये मैं कल जो बात आपसे अर्ज कर रहा था कि आप गौर कीजिए, इमिटेशन किस चीज़ का होता है? उसी चीज़ का इमिटेशन होता है कि जो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, जिसका अपना एक वज़न हो, जिसकी अपनी एक कीमत हो, झूठ उस वक्त झूठ बनता है जब सच की रैपिंग में उसको प्रेजेंट किया जाए, वरना वो झूठ थोड़ी है। कोई झूठा कभी ये नहीं कहता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। जब भी वो झूठ बोलना चाहता है तो सच का उन्मान लेकर वो अपने झूठ को प्रेजेंट करता है। ये वो मंजिल होती है कि जहां पर चीजें सस्पिशियस बन जाती हैं, और इसी वजह से मुनाफिकीन के लिए कुरान मजीद ने सख्त वईद का ऐलान किया कि ये तो क्लियर ही नहीं है। यानी ये अपने आप को इस तरह से कवर करके रखना चाहते हैं कि यहां से भी बेनिफिट लें और वहां से भी बेनिफिट लें। एक तो वो मरहला है कि जहां पर कोई उनको गन पॉइंट पर मुसलमान बनने का कह रहा हो, तब अगर वो कहें कि हम तो मजबूर हो गए तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर उनके ऊपर कोई फोर्सफुली इस्लाम लाने का प्रेशर नहीं डाल रहा, फिर अगर निफाक की निकाब उन्होंने अपने चेहरे पर डाली हुई है तो कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई मजबूरी तो नहीं है, फिर तो इसका मतलब यह है कि खुद से बातें हैं कि ये अंदर ही अंदर वो इतना नापाक अज़्म रखते हैं, इतनी नापाक नीयत रखते हैं कि चाहते हैं किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाएं। ये वो कैफियत है कि जिसको इस्लाम बहुत ज्यादा कंडेम करता है। वापस ध्यान में रखिए कि अगर इस्लाम ने मजबूर किया होता और ये लोग चेहरे के ऊपर नकाब डालते निफाक की, तो फिर हम इनको मजबूर मानते, हम इनको मुनाफिक ना कहते। मगर जब इस्लाम ने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर किस मजबूरी की वजह से वो ये काम कर रहे हैं। मगर अभी मैं इसकी डिटेल्स में भी नहीं जाता। ये तीन कैटेगरीज कुरान मजीद ने बयान की। वो जो फिक्र निजात रखने वाले हैं वन, वो जिन्होंने कुफर को एज एन ऑप्शन लिया है टू, और नंबर तीन मुनाफिकीन। अब उसके बाद कुरान मजीद का उसलूब हमारे सामने आता है। इन तीन कैटेगरीज को बयान करने के बाद कुरान तमाम इंसानों से मुखातब होता है। या अय्युहन नास, ए इंसानों। ये है कुरान की हमगीरी, ये है कुरान की आलमगीरियत। कुरान ये नहीं कहता ए बनी इसराइल, कुरान ये नहीं कहता ए बनी इस्माइल, महदूद नहीं करता। जब किताब किताब हिदायत है और कयामत तक के लिए हिदायत है और किसी एक ग्रोह में ये हिदायत मुनहसिर नहीं है, तो फिर उसके बाद जितने अफराद हैं उन सब को एड्रेस करना खुद कुरान मजीद की आलमगीरियत की दलील है। कुरान अपना तारुफ कैसे करवाता है? परवरदिगार आलम का तारुफ करवाता है तो कहता है रब्बिल आलमीन। जब रसूल का तारुफ करवाता है तो कहता है रहमतन लिल आलमीन। और यहां पर कहता है या अय्युहन नास, ए इंसानों, उबुदू रब्बकुम, इबादत करो अपने रब की। क्या रब था इसका? वो जो सूरह फातिहा के अंदर बयान किया गया था, जिस तरह से हर किताब का एक प्रीफेस होता है, फॉरवर्ड होता है, मुकदमा होता है, और फिर उसके बाद आगे उसकी तफसील बयान की जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से सूरह फातिहा में उस फितरी आवाज की तरफ मुतवज्जे किया गया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और यहां पर क्या कहा जा रहा है? उसी तफसील को बयान किया जा रहा है कि वो जो तुम्हारे अंदर की आवाज है और तमाम इंसानों की है, उन सबको मुखातब किया जा रहा है, या अय्युहन नास, ए इंसानों, उबुदु रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। यानी जो तुम्हारा पालने वाला है उसी को खुदा मानो। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले वाले जो हैं उनको भी उसी ने पैदा किया, किसी और ने पैदा नहीं किया। क्यों ये काम क्यों करो? लअल्लकुम तत्तकून, कि शायद तुम मुत्तकी बन जाओ। ये क्या हुआ? हुआ ये कि पहले तीन कैटेगरीज बयान की गई कि एक ये है जिनको साहिब तकवा कहा जाएगा, दूसरे वो आए कि जिन्होंने कुफर को इख्तियार किया वो काफरीन की जमात है, तीसरी जमात मुनाफिकीन की है। और इन तीनों को प्रेजेंट करने के बाद अब दावत दी जा रही है कि ए इंसानों, तुम अपने बारे में फैसला करो, तुम किस कैटेगरी में जाना चाहते हो। तुम उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जो अपने फ्यूचर के बारे में कॉशियस है, जो अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है, मुत्तकी है, साहिबान तकवा है, परहेजगार है, जो इस बारे में एक फिक्र रखते हैं। क्या कहना? यही वो ऑप्शन था कि जो तुम्हें इख्तियार करना चाहिए था। अगर उसको इख्तियार करना चाहते हो तो अब हम तुम्हें दावत देते हैं, ए इंसानों, ए इंसानों, तमाम इंसानों, ओ बुदू, इबादत करो रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको भी पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले वालों को भी उसी ने पैदा किया, किसी और ने पैदा नहीं किया। क्यों ये काम करो? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। जो तुम्हारी फिक्र है मुस्तकबिल की, अगर तुम उसको एड्रेस करना चाहते हो तो ये काम तुमको करना पड़ेगा। अब परवरदिगार आलम मंजिले दलील पर आता है, परवरदिगार आलम कन्वेंस करता है। देखिए ये आयत हम इस तरह से किसी के सामने नहीं पेश करेंगे। अगर कोई गैर मुस्लिम है तो हम ये कहें कुरान के अंदर लिखा हुआ है लिहाजा मान लो, नहीं हम ये नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि कुरान की इस दावत पर गौर करो, अगर तुम्हें अपील कर जाए तो तुम इसको कबूल कर लो। देखिए जो मुसलमान है वो तो मुसलमान होने की वजह से कुरान को इल्हामी किताब समझेगा, अल्लाह की किताब मानेगा, तो हमारी बात के अंदर फोर्स पैदा हो जाएगा कि ये तो खुदा कह रहा है। लेकिन अगर गैर मुस्लिम है उसके सामने आप ये हुज्जत नहीं कर सकते कि चूंकि कुरान की आयत है लिहाजा मानो। वो कहेगा मैं कुरान को कब मानता हूं। हम उसके सामने जब ये बात करेंगे तो किस तरह से करेंगे? हम कहेंगे जिस तरह से आप मेरी बात सुन रहे हैं, इनकी बात सुन रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उसी तरीके से कुरान की बात भी सुनिए। जैसे नहजुल बलागा, नहजुल बलागा में मौला का कोई कॉल है, मैं एक मोमिन के सामने तो बड़ी आसानी के साथ पेश कर सकता हूं कि ये मौला ने फरमाया है। लेकिन अगर कोई गैर है, अगर उसके सामने मैं पेश करूं तो मैं कहूं मेरे मौला ने कहा है, तो वो ये कहेगा कि आपके मौला हैं तो आप मानिए, मैं क्यों मानूं? और उसके बाद में बहुत वजन होगा कि भाई आपके मौला हैं आप मानिए। मैं कहूं मेरे रसूल की हदीस है, तो वो कहें आप रसूल मानते हैं तो आप उनकी हदीस को भी कबूल करें, मगर मैं कब उनको रसूल मानता हूं, उसके बाद में वजन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि या तो मैं उस रसूल की रिसालत को पहले एस्टेब्लिश करूं फिर हदीस पर अमल करने की दावत दूं, मैं अपने मौला की मौलाइयत को पहले एस्टेब्लिश करूं फिर नहजुल बलागा को बतौर सनद हुज्जत के उसके सामने पेश करूं। मगर दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं ये कहूं कि ठीक है आप मौला ना माने, मगर ये तो देखें कि उन्होंने बात क्या कही है। आप चाहे रसूल ना माने मगर मेरिट के ऊपर ऑन द फेस ऑफ इट आप गौर तो करें कि मेरे पैगंबर की हदीस क्या कह रही है। बिल्कुल उसी तरीके से आप कुरान को अभी बिलफर्ज इल्हामी किताब ना माने मगर जरा गौर तो करें कि कुरान इसके अंदर बोल क्या रहा है। कुरान ये कहता है या अय्युहन नास, एक तो इसकी हमगीरी देखिए कि तमाम इंसानों को मुखातब किया है, महदूदियत नहीं है इसके अंदर, तासुब नहीं है इसके अंदर, असबियत नहीं है, बायसनेस नहीं है। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ओ उबुदू इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की, अल्लज़ी खलक़कुम जो तुम्हारा भी पैदा करने वाला है, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले वालों का पैदा करने वाला भी वही है, क्यों लअल्लकुम तत्तकून शायद इसके जरिए तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारी वो फीलिंग जो फिक्र निजात के हवाले से है तुम उसको एड्रेस करने में कामयाब हो सको। अब खुदा दलील देता है कि खुदा के रब होने की दलील क्या है, अल्लज़ी ये खुदा वो है, ये तुम्हारा पालने वाला वो है, जाल लकुमुल अर्दा फिराशा जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया, वस्समा बिनाआ जिसने तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाया, अनजला मिनस समाए माअन और उसने आसमान से पानी को नाजिल किया, फअखरजा बिही मिनस समरात रिस्कन लकुम और उसने उस पानी को जमीन में जज्ब होने के बाद तुम्हारे लिए जमीन से फलों का रिस्क फराहम किया। फला तजअलू लिल्लाह अंदादन, देखो खबरदार अल्लाह के साथ किसी को नित करार मत देना, किसी को शरीक करार मत देना। नित शरीक ही के लिए एक और लफ्ज है अरबी का। फला तजअलू लिल्लाह अंदादन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार मत देना, वह अंतुम तालमून जबकि तुम्हें इल्म भी है। यह है कुरान की दलील। आपको मैं एतराज का हक देता हूं, इस आयत की तशरीह में आम तौर पर मैं एक सवाल किया करता हूं कि मुझे एक बात बताइए, हम गौर करें, कुरान ने तो दावत दी है ना, क्या फला या तदब्बरून अल कुरान, क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते, अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। तो कुरान ने तो दावत गौर व फिक्र दी है, तो हम इस आयत के ऊपर गौर करते हैं। वापस सुनिए इस आयत को और बहुत गौर से सुनिए, ए इंसानों उबुदू रब्बकुम इबादत करो, अपने रब की इबादत करो जिसने पैदा करके छोड़ नहीं दिया, अल्लज़ी खलक़कुम तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले वालों को भी उसी ने पैदा किया, क्यों लअल्लकुम तत्तकून शायद तुम मुत्तकी बन जाओ, शायद तुम परहेजगार ज़ब्ते नफ्स तुम्हारे अंदर आ जाए। अब दलील खुदा दे रहा है, ये मैं तीसरी दफा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि अब दलील दे रहा है, अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ा फिराशा जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया, वह समा बिना आ, जिसने तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाया। आप कह सकते हैं दलील कहां, ये तो दावा है। बरादरान अजीज, मैं बहुत माजरा चाहता हूं, मैं दावे करने का आदी नहीं हूं, मगर मंतिक मैंने पढ़ी एज अ सब्जेक्ट, और मंतिक को एज अ सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया भी है, लिहाजा मैं लॉजिकल आर्गूमेंट को समझता हूं कि सुकरा और कुबरा किस तरीके से डेवलप होता है और फिर उसके बाद किस तरह से उसे नतीजा निकाला जाता है। सुकरात ने क्या शक्ल अव्वल बयान की है, शक्ल सानी बयान की है, शक्ल राबे और शक्ल सालिस बयान की है, मैं उनसे वाकिफ हूं। मगर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि ये दलील है, आपको एतराज का हक है। क्या आप कहें कि इसमें दलील कहां है, ये तो दावा है, आपकी बात दुरुस्त है। फिर चलिए मेरे साथ, परवरदिगार आलम कह रहा है तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया, आसमान को छत बनाया, आसमान से पानी को नाजिल किया, ये तीनों दावे हैं। चीज हमारे ऑब्जर्वेशन में, जमीन फर्श है, आसमान छत है, यानी हद निगाह तक परवरदिगार आलम ने एक इंतजाम किया जहां पे हेवनली बॉडीज हमें नजर आती हैं, वहां से पानी नाजिल होता हुआ हमें दिखाई देता है, ये सब हमारी ऑब्जर्वेशन है। मगर परवरदिगार आलम ने क्लेम ये किया है कि ये सब उसने किया, फिर उसके बाद वो पानी जज्ब हुआ जमीन में और जमीन से अखरजा बेही मिनस समराते रिस्कन लकुम, उसने जमीन से तुम्हारे लिए फलों का रिस्क फराहम कर दिया। यहां पर दलील मुकम्मल हो गई और अब परवरदिगार आलम कहता है फला तजअलू लिल्लाह अंदादन, यह है मुतालबा डिमांड, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार मत दो, वह अंतुम तालमून, जबकि तुम्हें इल्म भी है। यह दलील कहां पर मुकम्मल हुई और हमें किस चीज का इल्म है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने एतमाद के साथ परवरदिगार आलम ने कहा कि जबकि तुम्हें इल्म भी है। हम कहें मालिक हमें तो कोई इल्म नहीं है, परवरदिगार आलम वापस गौर करने का मुतालबा करेगा कि जरा सोचो इस आयत के बारे में, गौर करो कुछ है इसके अंदर, इसके अंदर दलील मौजूद है, गौर करो। इस आयत पर गौर करने के लिए मैं आपके सामने एक मिसाल बयान करता हूं। बहुत ही मारूफ मुदर्रिस हैं जिनका नाम है मोहसिन कराची, उनकी किताब पर्सनली मुझे बहुत पसंद है जिसका नाम है मकतब रसूल, मैंने अक्सर उनका तारुफ भी करवाया। आगे मोहसिन कराची मिसालों के बादशाह हैं, जिस तरीके से वो मिसाल बयान करते हैं उसी आयत को समझाने के लिए मैं एक मिसाल आपके सामने अभी कोट करूंगा। जिस तरह से वो मिसाल बयान करते हैं वाकई वो हक अदा कर देते हैं। बहुत सी मुश्किल चीजें कई मर्तबा एक मिसाल के जरिए से आसानी से जहन नशीन हो जाती हैं। मसलन एक मर्तबा उसी किताब में मकतब रसूल में उन्होंने खुदा की फयाजी, खुदा की नेमतों को समझाने के लिए एक मिसाल दी और बिल्कुल प्रैक्टिकल। इंसान का मामला ये होता है कि जब कोई नेमत सामने होती है वो मुतवज्जे नहीं होता, मगर नेमत अगर छिन जाए या कुछ दिनों के लिए वो नेमत सस्पेंड हो जाए तो फिर अंदाजा होता है कि ये कितनी बड़ी नेमत थी। उन्होंने उसको समझाने के लिए एक मिसाल दी कि आप एक काम करें, अपने कॉलर का बटन अंगूठे के बगैर बंद करने की कोशिश करें, अपने कॉलर का बटन, अंगूठा फर्ज करें कि नहीं है, एक तो यह कि मैं वो अपने अंगूठे को कटवा लीजिए, नहीं अंगूठे को रखिए, मगर उसके बगैर बाकी उंगलियों को यूज करें और जरा इस बटन को बंद करने की कोशिश करें, नहीं हो पाएगा। अच्छा, उन्होंने वहां पर लिखा है इसकी अभी कोशिश करें, वहीं पर उन्होंने लिखा कि इसकी अभी ट्राई करें, ट्राई इट नाउ। मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं, मैंने यकीन कीजिए कि उसी वक्त कोशिश की थी जब मैंने पहली मर्तबा उसको पढ़ा था, मैं नहीं कर पाया। मैं आपसे ये नहीं कहता कि अभी कोशिश करें, मगर घर जाकर जरूर कोशिश कीजिएगा। तो क्या अंदाजा हो गया वाकया परवरदिगार आलम ने जो चीजें दी हैं वो कहां कहां अपना असर दिखाती हैं हमें नहीं मालूम। अब जरा गौर कीजिए, आयत वही आयत है, उसको समझाने के लिए उन्होंने एक मिसाल दी। ये जो पूरी आयत है ना, इस आयत के अंदर जो दलील है उसका नाम है बुरहान नज़्म, मगर उसको फलसफियाना अंदाज में समझाना वो एक अलग अंदाज है। इस मिसाल पर गौर करें, वो फरमाते हैं कि तीन से चार अफराद जमा हो जाएं, एक एक कागज ले लें और एक एक कलम उनको दे दिया जाए, एक कोने में एक शख्स बैठ जाए, दूसरा दूसरे कोने में बैठ जाए, तीसरा तीसरे कोने में बैठ जाए, चौथा चौथे कोने में बैठ जाए। आपने कागज भी दे दिया और कलम भी दे दिया। बहुत से अफराद तो इतने बखील वाकई हुए हैं कि नबी को भी उन्होंने कागज और कलम नहीं दिए, मगर दायरे के अब यहाँ तो मोमिनिन का मजमा है, तो कागज़ और कलम तो हर एक को मिल जाएगा। तो कागज़ और कलम लेकर सब एक एक कोने के अंदर बैठने, चार अफराद हैं। इनको बनाना क्या है इसके ऊपर? इनको मुर्गा नहीं बनाना, मुर्गे की तस्वीर बनानी है, मुर्गा नहीं बनाना। एक तो हम कहें ना कि जीता जागता आप मुर्गा बनाकर दिखाइए, नहीं नहीं, आपको फार्मिंग नहीं करनी है, आपको मुर्गा नहीं बनाना है, मुर्गे की तस्वीर बनानी है। आप मुर्गे की तस्वीर बनाइए, और किस तरीके से बनाइए कि एक शख्स जो इस कोने में बैठा हुआ है वो मुर्गे का सर बनाए, दूसरा जो दूसरे कोने में बैठा हुआ है वो सर नहीं बनाएगा, वो पेट बनाएगा, जो तीसरा है वो तीसरे कोने में बैठ जाए और मुर्गे का एक पैर बनाए, और चौथा जो चौथे कोने में बैठा हुआ है वो मुर्गे का दूसरा पैर बनाए। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि एतराज उस आयत पर यही हो सकता है कि ये तो दावा है कि ये सारे काम एक ने किए, एक खुदा ने किए। अगर हम ये मान लें कि जमीन को फर्श बनाया एक खुदा ने, आसमान को छत बनाया दूसरे खुदा ने, आसमान से पानी को नाजिल किया तीसरे खुदा ने, वो पानी जज्ब हो गया और जमीन से गल्ला उगा दिया, फलों का रिस्क फराम कर दिया, वो चौथे खुदा ने किया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? परवरदिगार आलम का ये कहना अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार मत दो जबकि तुम्हें इल्म है, हम तो उस इल्म को तलाश करना चाह रहे हैं, वो इल्म किस बात का है? अब वापस आइए, वो जो इस कोने में बैठा हुआ है जिसने सर बनाया है, और वो जो दूसरे कोने में बैठा हुआ है जिसने मुर्गी का पेट बनाया है, और वो जो तीसरे कोने में बैठा हुआ है जिसने मुर्गे का एक पैर बनाया है, और जो चौथे में कोने में बैठा हुआ है जिसने मुर्गे का दूसरा पैर बनाया है। अब आप एक काम करें, इसने जो सर बनाया है उसको लीजिए, उसने जो पेट बनाया है उसको लीजिए, इसने जो एक पैर बनाया है उसको लीजिए, और ये दूसरे ने जो चौथा पैर, चौथे ने जो दूसरा पैर बनाया उसको लीजिए, और फिर इनको जोड़ने की कोशिश करें, ये जुड़ेगा नहीं, ये जुड़ेगा नहीं, इसलिए कि उसने सर बनाया है अपने हिसाब से, इसने पेट बनाया है अपने हिसाब से, इसने पैर बनाया है अपने हिसाब से, उसने पैर बनाया है अपने हिसाब से। अगर चार बनाने वाले अलग अलग हों तो मुर्गा नहीं, मुर्गे की तस्वीर भी इतनी बेढंगी होती है कि अगर मिलाना चाहे तो मिलेगी नहीं। तो अब आप गौर फरमाइए कि अगर जमीन को फर्श बनाया एक खुदा ने, आसमान को छत बनाया दूसरे खुदा ने, आसमान से पानी नाजिल किया तीसरे खुदा ने, और चौथे ने जमीन से रिस्क उड़ा दिया, इन सब का आपस में मरबूत होना खुद ये दलील है कि बनाने वाला एक है, पालने वाला एक है। वरना ये चीजें मरबूत नहीं हो पाती। देखिए बरादरान अजीज, आप इस बात पर भी गौर करें, परवरदिगार ने हमें भूख दी और फिर उसके बाद मुतवज्जे किया, प्यास दी और फिर मुतवज्जे किया। इंसान जब भूखा होगा तभी तो वो गिजा के लिए दौड़ धूप करेगा, और जब वो गिजा के लिए दौड़ धूप करेगा तो इन तमाम तर चीज़ों पर गौर करेगा, जब प्यासा होगा तो पानी की तलाश में जाएगा, और फिर वो सोचेगा अच्छा ये भी है और ये भी है और ये भी है। यही वो चीज़ है जो इंसान को दूसरे मखलूकात से मुमताज करती है। परवरदिगार अगर भूख न रखे तो इंसान में एहतियाज नहीं होगी, जब एहतियाज नहीं होगी तो वो अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करेगा, जब वो अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करेगा तो मज़ाहिर कुदरत पर गौर व फिक्र भी नहीं करेगा। परवरदिगार इंसान को इस तरह से चाहता है कि वो अपनी एहतियाज की वजह से अपनी अकल को इस्तेमाल करने लगे, मज़ाहिर कुदरत पर गौर व फिक्र करने लगे, तब वो ज़मीन को भी देखेगा, आसमान को भी देखेगा, नाजिल होते हुए पानी को भी देखेगा, पानी के जज्ब होने को भी देखेगा, गल्ले के उगने को भी देखेगा, उगने वाले गल्ले के इस्तेमाल के बाद वो सोचेगा वो खुदा कैसा है कि जिसने इस तरह से पानी बरसा कर इंतजाम गिजा कर दिया ताकि मेरी भूख को सेटिस्फाई किया जा सके। यहाँ पर वो मुतवज्जे होता है कि हाँ, इसका मतलब ये है कि वो एक है जो इन तमाम तर निज़ाम को मैनेज कर रहा है। यही वो चीज़ है जिसको रुबूबियत से ताबीर किया जाता है कि वो पालने वाला है। यही वो चीज़ है कि जिसको दूसरे अंदाज से मुदब्बिर होने के उनवान से पेश किया जाता है कि तदबीर करने वाला वो परवरदिगार है। अब आइए बरादरान अजीज, हम बिल्कुल एक दूसरे सेगमेंट में दाखिल हों। आपको याद होगा पहली तकरीर के अंदर मैंने ये बात कही थी, और बीच बीच में मैंने बार बार इसकी तकरार की, जाहिलियत जाहिलियत जाहिलियत, बड़ी ज्यादती होगी और बहुत ज्यादा ज्यादती होगी अगर तौहीद की वजह से तवस्सुल को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाए तवस्सुल के नाम पर तौहीद को कुर्बान कर दिया जाए, बड़ी ज्यादती होगी। यानी परवरदिगार आलम क्या करना चाहता था और हमने क्या कर दिया? हमने कभी तवस्सुल के नाम पर तौहीद को कॉम्प्रोमाइज कर दिया और कभी हमने ये किया कि तौहीद के नाम पर तवस्सुल को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। हम क्यों परवरदिगार आलम की बारगाह में तवस्सुल के कायल हैं? क्यों, किस वजह से, वजह क्या है? देखिए बरादराने अजीज, अगर परवरदिगार वसीलों का कायल ना होता तो वो भूख ही को ना रखता। परवरदिगार आलम हर एक को हमेशा सैराब रखता, वो कादिर है, वो कर सकता था, मगर परवरदिगार के निजाम को तो समझे, परवरदिगार भूख ही को ना रखता, हर एक इंसान हमेशा सैर रहता। लेकिन नहीं, परवरदिगार का निजाम ये है कि इंसान अपनी मादी हाजतों की वजह से मादी वसीलों का मोहताज हो जाए और इस तरह से खुदा की कुदरत को समझे। ये आयत आपके सामने कि वो परवरदिगार, उसने जमीन को फर्श बनाया, वो चाहता तो आसमान से बराहराज गल्ला उतार सकता था, वो चाहता तो भूख ही को ना रखता, वो चाहता तो प्यास ही को ना रखता, उसने भूख को रखा। फिर उसके बाद परवरदिगार आलम चाहता तो बगैर गिजा के भी हमारी भूख को मिटा सकता था, लेकिन नहीं, परवरदिगार आलम ने हमारी भूख को मिटाने के लिए गल्ले का एहतमाम किया और उस गल्ले को उगाने के लिए भी फिर आसमान से वसीला पानी को नाजिल किया। आसमान से पानी नाजिल हो, जमीन में जज्ब हो, जमीन से वो उगे, इंसान उसे इस्तेमाल करे, अपनी भूख मिटाए। अगर परवरदिगार आलम वसीलों का कायल ना होता तो इस पूरे निजाम ही को ना रखता। परवरदिगार आलम ने इस पूरे निजाम को रखा। मुशरिक कौन है? मुशरिक वो है कि जो ग़िज़ा को भूख मिटाने का असली मंबा समझे। मुशरिक वो है, काफिर वो है कि जो पानी को प्यास बुझाने का असली मंबा पानी को ही समझे। लेकिन मुवाहिद कौन है? खुदा को मानने वाला, खुदा को एक मानने वाला कौन है? खुदा को एक मानने वाला वो है कि जो पानी पीता जाए अल्हम्दुलिल्लाह कहता जाए, उसका दिल गवाही दे कि पानी पीऊंगा ताकि मेरी प्यास बुझे, मगर पानी देने वाला खुदा है। वो गिजा खाता जाए, शुरू करे बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्यों? शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वो गिजा को इस्तेमाल करता है नेमत के उन्वान से, वो इस नेमत की तौहीन नहीं करता। बहुत तवज्जो कीजिएगा, वो उस नेमत की तौहीन नहीं करता, मगर शुरू करता है अल्लाह के नाम से, इसलिए कि वो इस नेमत के साथ खुदा को देख रहा है, वो अपने परवरदिगार को देख रहा है। अगर वो अपने परवरदिगार तक इस तरह से महदूद हो जाए कि नेमत को इस्तेमाल ही ना करे तो उसने कुफरान नेमत किया है, भूखा मर जाएगा। वो अल्लाह पर इल्जाम नहीं दे सकता कि मेरे परवरदिगार ने मेरे लिए इंतजाम नहीं किया। ना, परवरदिगार ने जिसको वसीला बनाया था तुमने मुंह मोड़ लिया तो तुम्हारा कसूर है, खुदा का कसूर नहीं है। तुम जिम्मेदार हो, तुमने कोताही की है, तुम कसूरवार हो, यू आर फॉल्टी, तुम्हारा एरर है कि तुमने उस वसीले से मुंह क्यों मोड़ लिया कि जिसे परवरदिगार ने मुकर्रर किया था। बस बरादरान अजीज, जिस तरह से जिस्म की एहतियाज को पूरा करने के लिए परवरदिगार ने मादी वसीले रखे हैं, उसी तरह से रूह की एहतियाज को पूरा करने के लिए परवरदिगार ने रूहानी वसीले रखे हैं। मैं अपने नौजवान दोस्तों को दावत देता हूं, वो गौर करें इस बात के ऊपर, बिल्कुल लॉजिकली सोचें, मुझे इंसाफ से मुझे बताइए ये हाउ है कि परवरदिगार का निजाम कैसे चल रहा है। तो मैंने एक पूरी तकरीर इस पर लगाई थी कि हाउ और वाई के दरमियान क्या फर्क होता है। परवरदिगार आलम वो वाई, वो सारा का सारा राज है परवरदिगार है। परवरदिगार ने ऐसा क्यों किया वो खुदा का राज है। हाउ क्या है, निजाम क्या है? निजाम ये है कि रोटी नहीं खाओगे तो भूख नहीं मिटेगी। मुशरिक उस सूरत में है कि रोटी को तुम भूख मिटाने का असली मंबा समझो, सोर्स समझो, लेकिन रोटी को खुदा की तरफ से समझो, मुवहिद हो, तुम बिस्मिल्लाह कहकर रोटी को खाओ ताकि उस तौहीद का एहसास जहन के अंदर हमेशा बेदार रहे। इंसान रोटी तक अपनी निगाहों को महदूद ना करे वरना वो मुशरिक है, वरना वो काफिर है कि रोटी खा रहा है मगर रोटी देने वाले की तरफ मुतवज्जे नहीं, पानी पी रहा पानी पिलाने वाले की तरफ मुतवज्जे नहीं है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, वो खुदा जो बराह रास्त भूख मिटा सकता था उसने रोटी दी, रोटी का इंतजाम किया, वो जो बराह रास्त प्यास बुझा सकता था, प्यास को रखता ही नहीं रखा, ये हाउ है, प्यास को रखा बुझाने के लिए प्यास को पानी का इंतजाम किया। मुवाहिद और मुशरिक, फर्क सामने आ गया आपके लिए। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, वो खुदा जो रूह को सेटिस्फाई करने के लिए हिदायत देना चाहता था, क्या वो हर एक के ऊपर किताब नाजिल नहीं कर सकता था? वो हर एक के ऊपर वही को नाजिल नहीं कर सकता था? मगर परवरदिगार के निजाम को तो समझिए, ये हाउ है। परवरदिगार आलम का निजाम है कि परवरदिगार ने कुछ नेमतें हर एक को दी हैं और कुछ नेमतें खास कर दी। यही तो इम्तिहान है कि नेमत अकल के साथ अब उस हादी को पहचानो जो नेमत हिदायत लेकर आया है। तौहीद के नाम पर अगर उस खुदा के मुकर्रर करदा वसीलों का इनकार कर दिया, उन वसीलों का इनकार नहीं है, खुद तौहीद का इनकार है। खवारिज का असल प्रॉब्लम यही था। मैं बहुत मोहतात अल्फाज में कहूं, हमारे वहाबी दोस्त इन्हीं बातों को नहीं समझ पाए। बहुत मोहतात अल्फाज में आप इल्मी एतबार से देख लीजिए, मैं आपके सामने दो तीन किताबें तो जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। अल्लामा सैयद अली नकी साहब की मारिकतुल आरा किताब उर्दू जबान के अंदर, रद्द वहाबियत, ये एक्चुअली अरबी जबान में खुद उनकी किताब थी, कशफुन निकाब अन अकायद मोहम्मद इबन अब्दुल वहाब। जब जन्नतुल बकी को मिसमार किया गया तो उसके बाद जो किताब लिखी गई रद्द वहाबियत के अंदर, वो पहली किताब अल्लामा सैयद अली नकी साहब की अरबी की किताब थी। फिर बाद में उन्होंने हिंदुस्तान के माहौल को देखते हुए खुद उसका उर्दू में तर्जुमा किया और इजाफे किए। आउट ऑफ प्रिंट थी, रिसेंटली वापस प्रिंट हुई है। अगर मेरे नौजवान दोस्त इन चीजों के हवाले से परेशान है कि तौहीद और इन दो चीजों के दरमियान रिकनसाइल कैसे किया जाए, कि तौहीद भी हो और वसीला भी हो, आयात कुरानी देखना चाहे वहां पर आपको मिल जाएगी फहरिस्तवार, अहादीस देखना चाहे वहां पर आपको मिल जाएगी फहरिस्तवार, वाकयात आप देखना चाहे वहां पर आपको मिल जाएगी फहरिस्तवार। इसी तरीके से हमारे बहुत ही मोहतरम मौजूदा दौर के आलिम दीन आयतुल्ला जाफर सुबहानी, उनकी एक किताब है आईने वहाबियत, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ वहाबीज्म के नाम से, उसका उर्दू तर्जुमा इसी नाम से हुआ आईने वहाबियत, वो भी पढ़ने वाली किताब है। इसी तरह से बहुत से दीगर उलमा ने इस हवाले से काम किया। लिहाजा इस बात पर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि अगर कोई यह समझ रहा है कि यह जबरदस्ती की कोई कोशिश है, तो भाई हो तो नहीं सकता, लेकिन यह जबरदस्ती की एक कोशिश हो रही है कि तौहीद और तवस्सुल को रिकनसाइल किया जा रहा है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो बिल्कुल जहन से इस चीज को निकाल दें। तौहीद एक हकीकत है जिसका मतलब यह है खुदा को मानो, नहीं, जिसका मतलब है खुदा को एक मानो। और तवस्सुल का मतलब क्या है? जिसको खुदा वसीला बनाए उसको वसीला मानो। अगर अपने हाथों से किसी को वसीला बना लिया जिसको खुदा ने एंडोर्स नहीं किया है, यकीन जानिए वो ऐसा ही है कि अपने हाथों से किसी को बुत बनाकर खुदा का नुमाइंदा समझ लिया। यह हक किसी के पास नहीं है। जब खुदा की बारगाह का वसीला है तो खुदा बताएगा। अगर आप अपने हाथ से कोई किताब लिख लें और कहें ये अल्लाह की किताब है, तो वो किताब वसीला नहीं बनेगी। कुरान अल्लाह नाजिल करेगा तो वो किताब वसीला कहलाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई शख्स इस दुनिया में दावा करे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे रसूल मान लो, मुझे वसीला मान लो, नहीं चलेगा, वो काबिल कबूल नहीं होगा बरादरान अजीज। मगर अगर परवरदिगार किसी को सनद मौजजा देकर अपना रसूल बनाए, तो अब इस रसूल का इनकार, इस रसूल का इनकार नहीं है, खुद खुदा का इनकार है। आप कुरान मजीद की आयतें देखिए, मैं युते रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि यह मामला सिर्फ हिदायत तक है? यह मामला सिर्फ हिदायत तक है कि हिदायत अगर लेनी है हमें, सिराते मुस्तकीम की अगर तफसीलात लेनी है, तो हम उस वसीले की तरफ रुजू करें, और अगर उससे हटकर कोई मामला हो, अगर परवरदिगार ना रखे तो मुझे कोई जबरदस्ती का शौक नहीं है। बरादरान अजीज, मैं आपके सामने आयत पहले पढ़ना चाहता हूं, जरा इस आयत पर गौर कीजिए। या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वत्तगु इलैहिल वसीला, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। वसीला बनाओ नहीं, वसीला बनाओ नहीं, वसीला बनाया उसने है, तुम तलाश करो। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, पैगंबर अकरम ने जब ऐलान किया है ना, तो पैगंबर अकरम ने भी ये नहीं कहा कि मैं बना रहा हूं, इन्नी जाएलुन लकुम फिस सकल है, इन्नी जाएलुन फीकुम सकल है, नहीं है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें बना कर जा रहा हूं, नहीं। इन्नी तारिकुन फीकुम सकल है, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ कर जा रहा हूं। बनाया उसने है, बनाने का इख्तियार जिस नबी को भी नहीं है तो उम्मत को कहां से हो जाएगा। परवरदिगार जब बनाता है तो उसकी शान ये होती है, इन्नी जाएलुन फिल अर्ज खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बना रहा हूं। इबलीस का इशू क्या था, आप गौर करें इस बात के ऊपर, क्या इबलीस खुदा का इनकार कर रहा था? खुदा को मान रहा था, मगर परवरदिगार ने कहा काना मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से था। क्यों? जब वो अल्लाह को मान रहा था तो फिर काफिर कैसे हो गया? अल्लाह को मान रहा था मगर अल्लाह जिसको मनवाना चाहता था उसको नहीं मान रहा था। परवरदिगार जब ऐलान करता है उसकी शान ये होती है, इन्नी जाएलुन फिल अर्ज खलीफा, मैं बना रहा हूं जमीन में। ये हक परवरदिगार का है, ये जलाल व जबरूत, ये किबरियाई, ये उसी को जेब देती है कि वो बनाए। इन्नी जाएलुन फिल अर्ज खलीफा, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इमामत का ऐलान किया है वहां पर भी कहा गया इन्नी जाएलुका लिन्नास इमामा, जाएल जाएल बनाने वाला, मैं ए इब्राहिम तुम्हें बना रहा हूं तमाम इंसानों के लिए, मैं तुम्हें इमाम बना रहा हूं। ये अंदाजे कुदरत तो आप देखिए कि मैं तुम्हें बना रहा हूं। बनाने का हक सिर्फ परवरदिगार का है। हमसे ये कहा जा रहा है वब्तहु इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। इतना तो हमें समझ में आता है कि वो वसीला जो भी होगा खुदा नहीं होगा, खुदा तक पहुंचने के लिए होगा, खुदा नहीं होगा। अब वो अगर नमाज है, बेशक है नमाज खुदा तक पहुंचने का वसीला है, बेशक है, लेकिन क्या नमाज खुदा है? नमाज इबादत का एक अंदाज है। बेशक रोजा, कुरान मजीद ने कहा वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। सब्र की एक तशरीह ही ये की गई कि ये रोजा है, सब्र से मदद हासिल करो, नमाज से मदद हासिल करो। मैं सवाल करता हूं इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, जब हमने कहा तेरी ही इबादत करते हैं तुझी से मदद चाहते हैं, तो ये मदद चाहना अगर परवरदिगार आलम से इस तरह से इख्तिसास रखता है कि किसी वसीले को भी मदद के लिए नहीं पुकारा जा सकता, तो मुझे बताइए क्या नमाज खुदा है? क्या सब्र खुदा है? समझने वाली बात यह है कि जिसको खुदा मदद के लिए मुअय्यन करे उससे मदद लेना ऐसा ही है जैसे खुदा से मदद लेना। रोटी का इनकार अगर एक इंसान कर दे भूखा मर जाएगा। मैंने अर्ज किया कि इल्जाम खुदा पर नहीं होगा, इल्जाम इस बंदे पर होगा। तुम्हें क्या हक था कि खुदा की नेमत का कुफरान करो? वो कहे नहीं मैं तो खुदा वाला हूं, खुदा ही भूख मिटाए तो मिटाए, मैं इस रोटी को तो इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये जिद है, ये उमूर तबीई के अंदर खारिजियत होगी कि जहां जिस्मानी जरूरियात को पूरा करने के लिए वसीले का इनकार कर दिया जाए। और बरादरान अजीज, नमाज बेशक वसीला है, बहुत मोहकम वसीला है, बेशक सब्र वो अखलाकी सिफत है कि जो वसीला है, मगर ये खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का एक जरिया है। बिल्कुल इसी तरीके से क्या परवरदिगार आलम ने किसी और वसीले का तारुफ करवाया? सूरह निसा 64वीं आयत, रसूल अल्लाह को आप बाईपास नहीं कर पाएंगे। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल, काश ऐसा होता इज़्ज़लमू अन्फुसहुम, ये खुदा कह रहा है कि जब इन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, जाऊका ए हबीब ये आपके पास आते, यकीन जानिए कि मैं बहुत मोहतात तर्जुमा कर रहा हूं, बहुत मोहतात। अगर कोई भी अरबी दान है आप उसके सामने इस आयत को रखिए, आप किसी का भी तर्जुमा देखिए, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी का देख लीजिए, मौलाना मौदूदी का देख लीजिए, जो सऊदी अरब से छपता है उसको देख लीजिए, जितने तर्जुमे आप देख लीजिए, अरबी अल्फाज को साथ रखें, अगर थोड़ी बहुत भी अरबी से शुद्ध बोध है तो आप खुद समझ जाएंगे तर्जुमा सही है या तर्जुमा सही नहीं है। परवरदिगार क्या कह रहा है? वलौ अन्नहुम, ऐसा क्यों नहीं किया? इज ज़लमू, जब इन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, गुनाह हो गया था, गलत काम हो गया था, नहीं करना चाहिए था मगर ऐसा हो गया, तो ए हबीब उसके बाद इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? शिकवा है खुदा को, जाऊ का ए हबीब ये तुम्हारे पास क्यों नहीं आए? फस्तगफरुल्लाह, फिर उसके बाद ये अल्लाह से इस्तगफार करते, वस्तगफर लहुम रसूल, और रसूल भी इनके लिए इस्तगफार करते, یہ اللہ سے استغفار کرتے آپ کے پاس آنے کے بعد، اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے ہیں۔ میں بہت واضح سوال کر رہا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے، مجھے انصاف سے بتائیے، یہ شخص جب گنہگار ہے جب رسول کے پاس جائے گا تو کیا بولے گا؟ کیا وہ بت بن کر بیٹھا رہے خاموش، یا پہلا جملہ یہ گا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں گنہگار ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، قرآن کی آیت یہ حکم دیتی ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ سے استغفار کے لیے درخواست کروں، تو میں آپ سے استغفار کی درخواست کرتا ہوں، مجھے بتائیے اگر وہ یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کرے تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ یہ تو قرآن کی آیت کا تقاضا ہے کہ وہ رسول کے پاس آئے۔ میں اب آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی یا آج بھی نافذ ہے؟ یا تو کوئی ہمت کر کے کہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، یہ ہمت کسی میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ جب یہ آیت منسوخ نہیں ہو گئی، یہ آج تک موجود ہے قرآن مجید کے اندر، نافذ ہے۔ آج اگر کوئی اس آیت پر عمل کرنا چاہتا ہے، طریقہ آپ بتائیے، یا تو انسان دستبردار ہو اس پست عقیدے سے کہ رسول اللہ جب اس دنیا سے گئے تو اب ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ یقین جانیے کہ یہ آیت قرآن مجید کے اندر سند ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ اپنے ہینے حیات کے اندر لوگوں کے سلام کا جواب دیتے تھے، لوگوں کی بات سنا کرتے تھے، اسی طرح سے اللہ کے رسول بإذن الہی اپنے پروردگار کے اذن سے آج بھی اپنی امت کے مسائل کو سنتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ وہابیت نے یہاں پر آ کر، وہابیت نے بہت احترام کے ساتھ، میں بہت محترمانہ انداز میں، محتاط الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یقین جانیے کتابیں دیکھ ڈالیے، آپ کو ملے گا جو چھپتی ہیں کتابوں میں، تو بہت کچھ ہے جو ابھی بھی چھپتی ہیں، بن باز کی کتابیں دیکھیں، جو محمد ابن عبد الوہاب کی کتابیں آج بھی چھاپی جاتی ہیں، اس میں آپ چیک کریں، آپ کو ملے گا کہ بھائی جو اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں تو طریقہ کیا ہے۔ یقین جانیے کہ یہ الفاظ وہاں آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے کہ اگر کوئی شخص آیہ درود پر عمل کرنا چاہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آج بھی اگر کوئی اس آیت پر عمل کرنا چاہے اور درود بھیجے، سلام بھیجے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں، وہابیت کے بزرگ علماء احادیث کی روشنی میں یہ لکھتے ہیں، یہاں پر آ کر انہوں نے سرنڈر کیا کہ جب سلام پہنچتا ہے، سنیے گا یہ الفاظ، پروردگار پیغمبر کی روح کو پیغمبر کے جسم میں پلٹا دیتا ہے، پیغمبر اکرم جواب دیتے ہیں، پھر اس کے بعد روح واپس نکل لی جاتی ہے، سنیے، سنتے جائیے، پھر اس کے بعد کوئی دوسرا سلام بھیجتا ہے، پھر واپس روح ہے پیغمبر جسم مبارک کے اندر داخل کر دی جاتی ہے، وہ جواب دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد نکال لی جاتی ہے، پھر واپس اگر کوئی سلام بھیجے، درود بھیجے، پھر روح کو داخل کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نکال دیا جاتا، جواب دے دے پھر نکال دیا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس امت کے اندر 1 ارب سے زیادہ افراد موجود ہیں، 1 ارب سے زیادہ افراد موجود ہیں، ہر ایک نماز پڑھتا ہے، ہر ایک نماز میں درود بھیجتا ہے، محمد و آل محمد ہر ایک پر بھیجتا ہے، دونوں پر بھیجتا ہے، محمد اور آل محمد، یہ تو امام شافعی کا مشہور شعر ہے نا کہ آل محمد تمہارے فضل کے لیے یہی بہت کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اگر کوئی تم پر درود نہ بھیجے اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ یہ ہے تو اب اس کے بعد 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، ہر ایک نماز پڑھتا ہے، ہر ایک درود بھیجتا ہے، کتنے تو ایسے ہیں مسلسل درود بھیجتے رہتے ہیں، نماز نہ بھی ہو تو بھی درود بھیجتے ہیں۔ درود ایک بہت بڑا ذکر ہے، بہت بڑا ذکر ہے کہ انسان تسبیح نکالے، درود کی بہت سے منتیں مانتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ تو اب پیغمبر اکرم جسم مبارک کے اندر روح داخل ہو، جواب دیں، پھر اس کے بعد روح نکال لی جائے، پھر اس کے بعد کوئی سلام کرے، روح داخل ہو، وہ جواب دیں، پھر نکال لی جائے، تو اب میرے خیال میں پروردگار عالم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہوگا کہ جب مسلسل درود و سلام بھیجا جا رہا ہے تو اب روح نکالنے کی ضرورت نہیں، روح کو اندر ہی رہنے دیا جائے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کار کتاب و مساحت ستہ میں آپ دیکھیے آپ کو ملے گا کہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد وہ روضہ رسول, اس وقت روضہ اس انداز سے نہیں تھا, قبر تو تھی اور قبر پہ حجاب تھی, اس کے اوپر باقاعدہ کوئی زری بھی نہیں بنی ہوئی تھی, مگر پیغمبر اکرم کے قبر کے پاس آ کر انہوں نے یہ جملے کہے کہ اللہ کے رسول قرآن کہتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو آپ کے پاس آئیں اور آپ سے استغفار کی درخواست کریں. اے اللہ کے رسول, جس طرح سے آپ کی زندگی میں آیا کرتے تھے افراد, اسی طریقے سے اب میں آپ کی وفات کے بعد آیا ہوں اور آپ سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے استغفار کریں. کوئی مجھے بتایا کہ یہ سارے صحابہ کرام جتنے بھی یہ کام کر رہے تھے وہ سب مشرک ہو گئے؟ یہ کتنی بڑی جسارت ہے, یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. میں آپ سے عرض کروں برادران عزیز, صحاحہ ستہ کے اندر, بخاری مسلم وغیرہ کے اندر آپ کو یہ حدیثیں ملیں گی کہ پیغمبر اکرم کے پسینے تک کو, پیغمبر اکرم کی ناک کی رطوبت کو, غور کیجئے گا, پسینے کو, ناک کی رطوبت کو, وضو کا پانی تو ہے ہی کہ پیغمبر اکرم وضو کے لیے پانی ڈالتے ہیں, صحابہ کرام, مخلص صحابہ کرام جن پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں, ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کی ریش مبارک سے گرنے والے وضو کے پانی کو زمین تک نہیں پہنچنے دیتے تھے, اس پانی کے قطروں کو بھی اپنی چلو میں لے کر کوئی اپنے منہ پر ملتا تھا. کیا صرف پانی کے ساتھ یہ معاملہ تھا؟ نہیں, اگر پیشانی کا پسینہ گر رہا ہو کسی کو مل جائے وہ اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتا تھا. ناک کی رطوبت, عام طور پر انسان تنفر کرتا ہے ناک کی رطوبت سے, مگر پیغمبر کی ناک کی رطوبت اگر کسی کو مل جائے, صحابہ کرام کا یہ طریقہ صحیح ستہ کے اندر لکھا ہوا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, رسول رسول ہیں مگر اس نسبت کی وجہ سے یہ پسینہ اتنا محترم ہو گیا؟ پسینے میں تو زندہ اور مردہ کی کوئی بحث نہیں ہے, ناک کی رطوبت میں تو زندہ اور مردہ کی کوئی بحث نہیں ہے, وہ جو وضو کا پانی گر رہا ہے اس میں تو زندہ اور مردہ کی کوئی بحث نہیں ہے, مگر رسول کے جسم سے متصل ہونے کی وجہ سے وہ اتنا بابرکت بن گیا کہ اس سے تبرک لینا بھی درست ہو گیا. کوئی مجھے بتائے کہ رسول کے اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے پیغمبر اکرم کی تمام برکتیں ختم ہو گئیں؟ کیا وہ رحمت للعالمین نہ رہے؟ کیا ان کی رسالت ختم ہو گئی؟ ماذا اللہ, کوئی ایسا سلسلہ نہیں. حضرت علامہ طالب جوہری صاحب بہت پیارا جملہ کہا کرتے ہیں کہ اگر یہی عقیدہ ہے تو ترجمہ کرو اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ترجمہ کیوں کیا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول تھے, وفات پا گئے. کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ یہ ترجمہ کرے. محمد اللہ کے رسول ہیں, ہم نے یہ تو دیکھا ہے, یہ تو دیکھا ہے کہ بہت سے افراد اس دنیا کے اندر زندہ ہوں اور ان سے ان کا رینک چھین لیا جائے, یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ صاحب ان کو کورٹ مارشل کی وجہ سے ہی از نو مور ایکٹیو جنرل, ہی از نو مور ایکٹیو ایس ایچ او, ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا, آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی بنا دیا گیا. یہ تو ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خطا ہو, بندہ رہتا ہے اس کا عہدہ چھین لیا جاتا ہے. یہ شان مصطفیٰ ہے کہ نہ زندگی میں عہدہ کبھی جدا ہوا, نہ قیامت تک ایسا ہو سکتا ہے. قیامت میں بھی رسالت پوری طرح سے نافذ ہے. اگر رسالت وہاں پر نہ ہوتی تو شفاعت کس بنیاد پر ہوتی؟ بس برادران عزیز, آپ سورہ یوسف کو اٹھا کر دیکھیے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے برادران یوسف درخواست کر رہے ہیں, یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین, اے بابا جان ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. یا ابانا ندا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اے بابا جان, یا کے ساتھ ہے, اے بابا جان ہمارے لیے دعا کریں استغفار کی. ذنوبنا انا کنا خاطئین, ہم نے جو یوسف کے ساتھ کیا بہت برا کیا, ہم خطا کار تھے, ہم گناہ گار تھے, ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں. یعقوب علیہ السلام کو ڈانٹنا چاہیے تھا, اب بھی نہیں سدھرے, اب بھی موحد نہیں بنے, اب بھی تمہیں خدا کا ایک ہونا سمجھ میں نہیں آیا, میری کیا مجال کہ میں درمیان میں وسیلہ بنوں؟ مگر یعقوب علیہ السلام ڈانٹ تو نہیں رہے, ہمیں تو نظر یہ آ رہا ہے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں سوف استغفر لکم, میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کروں گا. یہ کیا ہو گیا برادران عزیز؟ ایک تو یعقوب بنے وسیلہ, برادران یوسف نے وسیلہ بنایا, یعقوب بنے وسیلہ, اور پھر اس کے بعد فوراً دعا نہیں مانگتے. یہ کیا چکر ہے؟ فوراً دعا نہیں مانگتے, وہ کہتے ہیں وقت آئے گا تو میں خدا کی بارگاہ میں دعا مانگوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقتوں کے اندر اوقات میں بھی کچھ وقت ہوتے ہیں جن کو خدا نے وسیلہ بنایا ہے. شب جمعہ بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا شب جمعہ آئے گی تب میں خدا سے استغفار کروں گا تمہارے لیے. دن تو سارے خدا کے ہیں, یہ ہاؤ ہے, یہ نظام پروردگار ہیں. وہ نظام پروردگار جس کو سمجھا جائے گا وہی کی روشنی میں. میں آپ سے اسی سورہ یوسف کے حوالے سے آخری آیت مصائب سے پہلے ذرا غور کیجیے اس بات کے اوپر. حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں, یعقوب علیہ السلام کنعان میں فلسطین میں, برادران یوسف کئی پھیروں کے بعد جان چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام یہی جوزار سیب, یہ عزیز مصر, یہی ہمارا وہ بھائی ہے. یعقوب علیہ السلام کی بینائی جا چکی ہے گریے کی وجہ سے, آنسو بہانے کی وجہ سے. یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟ یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی ہیں, یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں, مگر اب ہمارے سامنے توسل کا ایک اور انداز آتا ہے. یوسف علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں اپنے بھائیوں کو؟ اے ذہبو بے قمیصی حاضا, اے میرے بھائیوں جاؤ میری اس قمیص کو لے کر جاؤ. فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا, میرے بابا کے چہرے پر میری قمیص کو ڈال دینا, ان کی بینائی واپس آ جائے گی. کوئی مجھے بتائے یہ کیا, یہ کیا ہوا, یہ قمیص کس کی ہے؟ کوئی اور قمیص اگر ڈالی جاتی تو یہ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا, لیکن یہ یوسف علیہ السلام کی قمیص ہے. کچھ تبرکات ہیں جن کی کوئی اہمیت ہے. کوئی مجھے بتا یہ قرآن کی آیت نہیں تو کیا ہے؟ یہ توسل نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تبرک لینا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ غور فرمائیے, نسبت ہے یوسف علیہ السلام سے. میں نے عرض کیا کہ یہ توسل کوئی زبردستی کا معاملہ نہیں ہے. توحید بہت اہم ہے برادران عزیز. خدا کے لیے کبھی توسل کی وجہ سے توحید کمپرومائز نہ ہو, اور کبھی توحید کی وجہ سے توسل کمپرومائز نہ ہو. توحید اور توسل آپس میں انٹرلنکڈ ہیں. یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر نہیں کہا, اللہ کا نام بھی نہیں لیا, غور کیجئے اس بات کے اوپر. مگر کوئی یوسف علیہ السلام سے پوچھے اے یوسف کیا اللہ سے ہٹ کر کوئی کام کرنے جا رہے ہو؟ کان پکڑ لیں گے. تو خدا کے لیے مجھ پر یہ تہمت لگاتے ہو, کیا میرے بارے میں تم تصور بھی کر سکتے ہو؟ تو کہا آپ نے لفظ تو نہیں کہا. کہا لفظ نہ بھی کہا ہو میرے دل میں یہ ارادہ موجود تھا, میرے دل میں یہ ارادہ موجود تھا. کوئی مجھے کسی مومن سے پوچھ کر بتائے جب آپ علی کو توسل کے لیے پکارتے ہیں یا حسین سے توسل کرتے ہیں تو کیا خدا کا شریک قرار دیتے ہیں؟ کسی کے ذہن کے اندر, کسی کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز اگر ہے تو وہ نکال دے, نعوذ باللہ من ذالک. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. مومن تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اللہ کو مانتا ہے پھر رسول اللہ کو مانتا ہے پھر ولی اللہ کو مانتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا کلمہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے. جب ہم محمد کی بات کرتے ہیں ہم محمد اللہ نہیں کہتے, محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جب علی کا ذکر کہتے ہیں علی اللہ نہیں کہتے, علی ولی اللہ کہتے ہیں. وہ نسبت ایک مرتبہ اسٹیبلش ہو گئی, اب اس کے بعد کوئی یا علی کہے تو وسیلہ سمجھ کر کہے, یا رسول اللہ کہے توسل سمجھتے ہوئے کہے. یہ اگر اس کے ذہن و دل و دماغ کے اندر بالکل درست ہے کافی ہے. اگر یہ اشتباہ ہو رہا ہے تو اس کی وضاحت کر دیں اور بھی اچھی بات. اگر کوئی سوال کرے آپ واضح کریں کہ ہم علی کو مستقل نہیں سمجھتے, ہم رسول اللہ کو مستقل نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں یہ نمائندہ پروردگار ہیں, یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمارے وسیلے ہیں. اگر اتنا ہو تو برادران عزیز بہت کافی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں, اذهبوا جاؤ بے قمیصی میری اس قمیص کو, حاضا اس قمیص کو لے کر جاؤ. فالقوه على وجه ابی, میرے بابا کے چہرے پر ڈالو, یات بصیرا, ان کی بینائی واپس آ جائیں گی. اور قرآن نے وضاحت کی, صراحت کی کہ انہوں نے یہی کیا, فرتد بصیرا, اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی. یہ سارا نظام پروردگار کا ہے, یہ سارا نظام قائم کردہ پروردگار عالم کا ہے. اگر اس کے اندر کوئی دخل دیتا ہے جسارت ہے. بس برادران عزیز, آل محمد نے اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ حسین کا صدقہ ہے کہ یہ فورم بھی اویلیبل ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم توحید کو ڈسکس کریں, توسل کو ڈسکس کریں. آج خاص طور پر میرا دل بھی چاہتا ہے, ایک مناسبت بھی ہے, ایک روایت کے مطابق تو, کہ یہ شب جناب سکینہ کی شب ہے, ان کی شہادت کی شب ہے, حسین کی وہ پیاری بیٹی औलाद वाले खास तौर पर बाप बेटियों से बहुत अटैच होते हैं, माएँ अपने बेटों से बहुत अटैच होती हैं, बाप अपनी बेटी से बहुत अटैच होते हैं। ये हुसैन की वो बेटी है कि जिसको खुद हुसैन ने कहा, जब रुख्सत आखिर के मौके पर हुसैन आए थे और फिर जुलजना पर बैठे रवाना होने के लिए, तो आप जानते हैं कि इमाम मजलूम ने जुलजना के कान में एक जुमला कहा। जब जुलजना आगे नहीं बढ़ रहा था तो हुसैन मजलूम ने क्या कहा, जुलजना ये आखिरी जहमत है। जुलजना क्या जवाब दे, जबाने बेजबानी से मुतवज्जे किया। इमाम ने देखा कि जुलजना के पिछले पैरों से सकीना लिपटी हुई है, फरियाद कर रही है, जुलजना मेरे बाबा को मख्तल में ना ले जा, सुबह से जो गया वो वापस नहीं आया, मेरे बाबा को मख्तल में ना ले जा। हुसैन जुलजना से उतरे, ये चंद लम्हों की दास्तान है बरादरान अजीज, चंद लम्हों की दास्तान। हुसैन नीचे उतरे, सकीना को अपनी गोद में लिया, अरे जुमला का दाही नहीं सकीना लल्ली आती के बिल्मा, ए सकीना मुझे जाने दे, शायद मैं तेरे लिए पानी ले आऊंगा। सुबह से पानी का तकाजा करने वाली बच्ची पानी का नाम सुनती है तड़प जाती है, बाबा मैं पानी का नाम भी नहीं लूंगी, बाबा मैं पानी का जिक्र भी नहीं करूंगी, मेरे चाचा अब्बास भी यही कहकर गए थे, ना पानी आया ना मेरा चाचा वापस लौट कर आया। 3 साल की बच्ची है ये, जिंदा ने शाम में 4 साल की हुई और इस दुनिया से रुखसत हो गई। उस मौके पर जब हुसैन बच्ची को बहला रहे थे तो इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, ए सकीना तू मेरी नमाज शब की दुआओं का नतीजा है, मैंने तुझे अपने परवरदिगार से नमाज शब में मांगा था। क्या जुमले, उलमा बयान करते हैं, इमाम हुसैन ने कहा, ए सकीना मैंने खुदा से ये दुआ मांगी थी कि परवरदिगार मुझे ऐसी बेटी अता कर कि जिससे मैं बहुत प्यार करूं, वो मुझसे बहुत प्यार करे, और ऐ परवरदिगार तेरे दीन की खातिर बाद में उसको तमाचे लगे मैं सब्र करूं। ऐ सकीना मेरी उस दुआ के बाद तू पैदा हुई। सकीना 3 साल की बच्ची है, 3 साल के बच्चों की मासूमियत को अपने जहन में लेकर आई है, सुन रही है बाबा क्या बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद इमाम कहते हैं, सकीना तू सीने पर सोने की आदी है ना, कुछ देर के लिए मैं रेगजारे करबला पर लेट जाता हूं, तू मेरे सीने पर सर रख, शायद तुझे नींद आ जाए। सकीना मान गई, हुसैन लेट गए, सकीना ने बाबा के सीने पर कुछ देर के लिए सर रखा, आंख लगी, आंख खुली और कहती है, बाबा जरा मुझे गोद से उतार तो दे। इमाम हुसैन ने गोद से उतार दिया और अब सकीना मासूमियत के साथ कहती, जाइए बाबा खुदा हाफिज, जाइए बाबा खुदा हाफिज। अरे इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ सकीना अभी मुझे रोक रही थी और अब कह रही है जाइए बाबा खुदा हाफिज, का हाँ बाबा अब मैं कैसे रोक सकती हूँ, अभी अभी कुछ देर के लिए मेरी आंख लगी, मैंने ख्वाब में दादी जहरा को देखा जो मुझसे ये कह रही थी कि ऐ सकीना मेरे हुसैन का रास्ता मत रोक। वो वक्त आ गया कि जिसके लिए मैंने हुसैन को चक्कियां पीस पीस कर कहा, जाइए बाबा खुदा हाफिज, अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। ये सकीना वही बच्ची है कि जब हुसैन की शहादत के बाद जुलजना के हिनहिनाने की आवाज आई तो सकीना ने जुलजना को मुखातब करके कहा, देखा जुलजना ने अपनी पेशानी के बालों को हुसैन के खून से रंगीन किया हुआ था, सकीना समझ गई मेरे बाबा शहीद हो गए। क्या जुमला है सकीना का उस मौके पर, बीबी कहती है, जुलजना मुझे सिर्फ इतना बता दे, हल सुकिया अभी हम कुतला अच्छा है, ऐ जुलजना जब मेरे बाबा को ज़िबा किया गया बाबा को पानी मिल गया था या प्यासा ज़िबा कर दिया गया, ऐ सकीना तुझे ये जुलजना कैसे बताए कि तेरा बाबा भी इस दुनिया से प्यासा गया। बस अजीजों अब सफर कूफा और शाम है और सकीना की हसरत है, अरे मेरे बाबा से कोई मुझे मिला दे, मेरा बाबा शहीद हो गया, कम से कम मेरे बाबा का सर मुझे दे दो, मैं अपने आगोश में ले लूं। इन्हीं यादों के साथ जिंदा ने शाम में 1 साल गुजर गया। सकीना ने क्या बाबा का सर कभी नहीं देखा, देखा कभी नोके नेजा पर बुलंद देखा, कभी इब्ने ज़ियाद के दरबार में चांदी के तश्त में देखा, कभी सकीना ने यजीद के दरबार में सोने के तश्त में देखा, कभी सकीना ने देखा कि शेमर यजीद छड़ी से मेरे बाबा के लबों के साथ गुस्ताखी कर रहा है, ये सब सकीना ने देखा। मगर सकीना की एक हसरत है, मेरे बाबा का सर मेरी आगोश में भी तो आए, और जिंदाने शाम में वो रात आ गई कि जब सकीना अचानक बेदार हुई और कहने लगी कि मेरे बाबा का सर कहाँ है, मेरे बाबा का सर कहाँ है। जनाब ज़ैनब बेदार हुई, सैयद सज्जाद बेदार हुए, बीबियाँ बेदार हुई और सब सकीना को देखने लगे। जनाब ज़ैनब तसल्ली देने लगी, कहा सकीना क्या हुआ? कहा नहीं, अभी अभी मैंने ख्वाब में देखा था मेरा बाबा का सर, और मैंने देखा यजीद मेरे बाबा के लबों के साथ गुस्ताखी कर रहा है। फूफी अम्मा मेरे बाबा का सर ला दो, फूफी अम्मा मेरे बाबा का सर ला दो। शोर बढ़ा, यजीद की नींद खराब हुई और यजीद ने कहा कि जाओ और जाकर उस बच्ची को खामोश करवाओ। गुलामों ने, कनीजों ने हाथ जोड़ लिए, ए यजीद कोई और काम हो तो बता, हम इस बच्ची को खामोश नहीं करा सकते। क्यों खामोश नहीं करा सकते? कैसे खामोश कराएं? उन गुलामों ने अपना उजर बयान किया, हम कैसे इस बच्ची को खामोश कराएं? हम इसे तमाचे मारते, ये कहती है हाय चचा अब्बास, हम इसे ताजियाने मारते, ये कहती है हाय मेरे भैया अली अकबर तुम कहां हो। ये और ज्यादा क्रिया करने लगती है, ये और ज्यादा चीखने लगती है। इस बच्ची को खामोश नहीं किया जा सकता। हाँ, आज ये अपने बाबा के सर का तकाजा कर रही है, हो सकता है कि अपने बाबा के सर को देखे तो ये खामोश हो जाए। खजाने से हुसैन का सर निकाला गया और एक तश्त में सरे हुसैन रखा गया, उसके ऊपर रुमाल से उसे ढका गया और अब कहा गया कि ले जाओ इसके बाबा के सर को, शायद ये खामोश हो जाए। रियाजुल अहजान, रियाजुल कुद्स, ये रिवायत मौजूद है कि जब इस अंदाज से सरे हुसैन आया कि तश्त के ऊपर सर है, सर को ढांक दिया गया है एक रुमाल एक कपड़े के जरिए से, और जैसे ही जिंदान के अंदर ये सर आया है, सकीना ने देखा, वो समझी मुझे पहलाने के लिए खाना भिजवाया गया है। कहने लगी मैंने खाना नहीं मांगा, मैंने अपने बाबा का सर मांगा है। किसी ने कहा सकीना ये तेरे बाबा का सर है। रुमाल हटाया गया, बीवियों ने देखा कि ये हुसैन का सर, हमारे वाली का सर, हमारे वारिस का सर। सारी बीवियां अपनी जगह से खड़ी हुई, पहले तो ज़ियारत पड़ी, अस्सलामु अलैका या बाबा, ए हमारे वाली, हमारे वारिस, हमारा सलाम कबूल कीजिए। और अब सकीना ने आगे बढ़कर अपने बाबा का सर अपनी आगोश में लिया और झुककर हुसैन के लबों को चूमने लगी, प्यार करने लगी। उलमा कहते हैं, और कितना सही कहते हैं, कि मंजर बदल गया। पहले जब कभी हुसैन घर में आते थे, करीब आते थे, झुककर सकीना को प्यार करते थे, और आज ये वक्त आ गया कि सकीना की आगोश में सरे हुसैन, सकीना झुककर अपने बाबा के लबों को चूमकर प्यार का इजहार कर रही है। और अब सकीना के बैंक शुरू हुए, सकीना फरियाद करती है, ऐ बाबा मंजल लजी कत्तलका, ऐ बाबा किसने तुझे कत्ल किया, मंजल लजी खज़बका बे दिमाग, ऐ बाबा किसने तेरे दाढ़ी को तेरे खून से रंगीन किया, मंजल लजी कता वरीदक, बाबा किसने तेरे गले पर खंजर चलाया, ऐ बाबा काश तेरी जगह मैं खंजर के नीचे आ जाती और तेरा सर नोके नेजा पर बुलंद करके दयार बदयार ना फिराया जाता। ऐ बाबा तेरे बाद इन बेवाओं का कौन है, बाबा तेरे बाद तेरी यतीमा का कौन पुरसाने हाल है, ऐ बाबा मेरे भैया सज्जाद को तो देखो तेरे बाद उसकी क्या हालत हो गई। सकीना बैन करते करते अचानक खामोश हुई, बाबा के सर पर अपना सर रख दिया, अब आवाज नहीं आती। ज़ैनब परेशान, सज्जाद परेशान। ज़ैनब कहती है ऐ बेटा सज्जाद जरा देखो मामला क्या है। सज्जाद ने नफ्स टटोली और ऐलान किया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب ما تنسى